हाँ ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन ये इतनी पहले हुआ है कि हम इसका अब कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। राम के शहर में, राम के देश में, राम टेंट में रह रहे हैं और केस लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि राम अयोध्या में पैदा हुए। मेरे ख्याल से वो एक नेशनल कलंक था हमारे।
बार की उस सुबह का मंजर देख रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया
और मंदिर वहीं बनाएंगे।
कहते हैं इसके मलबे में करीब 25 कार सेवक दफन।
तो ये इसलिए और इमोशनल मोमेंट है कि आप एक छोटे बालक को आपने उसके घर से निकाल दिया और वो अपना वो रामलला विराजमान, मतलब एक तरह से रामलला, द चाइल्ड राम वाज स्टैंडिंग इन कोर्ट एंड फाइनली गॉट हिज हाउस
बाधित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है।
एक तो केवल देश से नहीं दुनिया से कहा गया कि आप एक एक ईंट भेजें और उसमें श्रीराम लिख के भेजें, उसमें हिंदी में लिखा है, उसमें तमिल में लिखा है, उसमें तेलुगु में लिखा है, उसमें सब में श्रीराम 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 श्रीराम, बल्कि ऐसा है कि विदेशों से लोगों ने भेजी है। देखिए राम केवल भारत के प्रणेता नहीं है, राम इस विश्व के हीरो हैं। कैसे? इजिप्ट की जो सभ्यता है उसमें राजा को रामसेस कहा जाता था। इंडोनेशिया जो 90% इस्लामिक कंट्री है वहां पे सबसे बड़ी रामलीलाएं होती हैं आज भी। भारत में राज 200 से 250 टाउन ऐसे हैं, भारत के बड़े टाउन ऐसे हैं जो केवल टेंपल टाउन इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति बालाजी जो समय आंध्र प्रदेश में आता है वो अकेले अकेले में प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी। श्रीडी जो पास में है, छोटा मंदिर है, वो कम से कम 500 करोड़ की इकोनॉमी,
900 करोड़ के आसपास लग चुके हैं मंदिर बनाने में और 3,000 करोड़ से ज्यादा अभी भी कलेक्ट हुए हैं, पड़े हुए हैं बैंक में।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की गई?
आज का एपिसोड काफ़ी डिफरेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हमने ऐसा एपिसोड आज तक कभी नहीं बनाया क्योंकि आज से पहले इंडिया में इतना ऐतिहासिक मोमेंट भी कभी नहीं हुआ था। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस ऐतिहासिक मोमेंट के बारे में जितना डेप्थ में हम जान पाएँ उतना जानना चाहिए। तो इसीलिए हमने आज के गेस्ट को बुलाया, शांतनु गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, वो ऑक्सफोर्ड में फेलोशिप कर रहे थे इंडिया की तरफ से, और जो इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि ये जो ऐतिहासिक मोमेंट है जो 22 जनवरी को इंडिया में होने वाला है वो इंडियन सिविलाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ ये हिंदू रिलीजन के लिए, ना ही ये सिर्फ इंडिया के लिए, बट एक हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। और क्यों है इस एपिसोड में हमने जानने की कोशिश करी है। हमने बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी कि ये केस कैसे हुआ, केस किसने लड़ा, ये केस का वर्डिक्ट कब आया, किन किन लोगों ने इन्वॉल्व होके इसको सॉल्व किया, क्या प्रूफ पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये केस जीता गया। इससे पहले कि आप ये एपिसोड स्टार्ट करें, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स आपके सामने लाते हैं ताकि आपको इंसाइटफुल नॉलेज मिले बहुत ही जल्द और कम समय में। Enjoy the show. राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है,
बिल्कुल,
एंड इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है बहुत जोर शोर से। सो टेल मी, राम मंदिर भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी बड़ी बात क्यों है ऐसे?
देखिए राज, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, इनॉग्रेशन इज अ लूज वर्ड, प्राण प्रतिष्ठा, बिकॉज हमारे यहाँ जब मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण माने जाते हैं, आ जाते हैं, इस तरह से पूजा होती है, जो पूजा की विधि है। और अगर आप राम मंदिर का केस देखेंगे तो राम मंदिर का केस किसने जीता, अगर ये क्विज क्वेश्चन पूछो उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो रामलला विराजमान ने जीता। तो रामलला विराजमान मतलब रामलला हिमसेल्फ वॉज अ पार्टी एंड ही वन द केस, उन्होंने कॉन्टेस्ट करा कि भाई मेरा घर वापस दो एंड ही वन द केस। तो रामलला विराजमान, बल्कि जो पहली प्ली थी कि रामलला विराजमान लीगल एंटिटी है क्या, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो 1000 पेज का ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है जो नवंबर 2019 में आया, उसमें जो डेक्री मिली है, मतलब जो आपको रिलीफ जिसे हम कहते हैं, वो रामलला विराजमान को मिली है और उसके साथ कोई व्यक्ति लगा देते हैं एक जो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो रामलला विराजमान का घर है वहाँ पे। तो ये परजवरेंस है ना, जो भारत का परजवरेंस है, जो जुझारूपन है भारत का, कि भारत इतने आक्रांताओं के बाद भी आज भारत की सभ्यता ही है ये, बाकी तो पूरा विश्व ही नया है, जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं तो सब मर चुकी हैं, पूरा विश्व नया है, हमारी सभ्यता जो टिकी है, जो भगवान राम ने जो DNA हमारे अंदर इंसीप कर दिया ना कि भाई 14 साल की इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मैं वापस गया, मैं राजा राम बना, राइट। तो आई थिंक वो हम सबके डीएनए में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की सभ्यता टिकी है आज तक, देखिए आज हम चंद्र की पूजा भी करते हैं, चंद्रयान भी भेजते हैं, हम टाटा हमारी जाके लंदन की कंपनी कार की खरीद लेती है, लेकिन वो कार हम खरीदते हैं तो पहले वो मंदिर जाती है। तो सभ्यता और विज्ञान को एक साथ लेके हमारा ये देश चल पाता है और चल सकता है ना। हमारे अभी चंद्रयान भी गया तो जो साइंटिस्ट थे एक दिन पहले पूजा करने गए वो मंदिर में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि ओल्ड सिविलाइजेशन आपको ताकत देती है, ज्ञान भी देती है, विज्ञान का ज्ञान भी देती है, और आज की जो आपकी विज्ञान की ताकत है जो मॉडर्न है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो राम है मेरे ख्याल से। तो उनका प्रतीक, उनका उनके घर से चला जाना, एक टेंट में रहना, मेरे ख्याल से वो एक नेशनल कलंक था हमारे ऊपर। मैं जब भी उस मंदिर में जाता था, मंदिर में मतलब आपको पता है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था अब तक ना, राम एक टेंट में थे, छोटी सी कैनोपी लगी थी, वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी, आप उसमें देख सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेटस को मेंटेन करना। तो स्टेटस को क्या था, जब वो आखिरी लगा तो किसी ने भाई किसी को बुरा लगा कि राम की मूर्ति पे बारिश धूप आ रही थी, टेंट लगा दिया। टेंट मतलब एक तिरपाल सा लगा दिया, टेंट भी नहीं था वो ठीक सा, एक तिरपाल सा लगा दिया, उसी में राम थे। जैसे ही वर्डिक्ट आया तो योगी जी ने एक मेकशिफ्ट थोड़ा सा लकड़ी का टेंपल बना दिया उसी जगह पे, जब तक पास में मंदिर बड़ा बन रहा था। तो जब भी मैं उस मंदिर को देखने जाता था, दुख भी आता था, गुस्सा भी आता था कि राम के शहर में, राम के देश में, राम टेंट में रह रहे हैं और केस लड़ना पड़ रहा है उसके लिए, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। तो इसलिए जो परसेवरेंस की जो लड़ाई थी, जो परसेवरेंस की जो लेसन था हमारा, वो राम देते हैं। इसलिए उस मंदिर का महत्व केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसका बहुत लार्जर महत्व।
ये स्टार्ट कब हुआ था, आप बोल रहे थे कि
जी
राम को राम के शहर में, राम के राज्य में ही लड़ाई करनी पड़ रही है खुद के लिए।
अब ये केस तो हुआ, देखिए 1528 साल पहले बाबर ने मीर बाकी से कहा कि इसको तोड़ दो। और ये सबको पता है कि वो क्योंकि भारत की सभ्यता का, हिंदू सभ्यता का बहुत बड़ा प्रतीक था, इसलिए तोड़ा उसको। क्योंकि वो तो कोई नर्व सेंटर भी नहीं था इंडिया का उस समय, वो तो कोई प्रशासनिक सेशन नहीं था, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था वहाँ पे जिसको मार गिराना था, कोई बड़ा बिजनेस सेंटर नहीं था। तो उन्होंने चुन चुन के कि भाई अगर आप इनकी आस्था को तोड़ दो इनका मन टूट जाएगा, इनकी शक्ति टूट जाएगी, राम इनकी देश की शक्ति है, इसको तोड़ दो। तब उसने तोड़ा। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे अकाउंट्स आते हैं, जो हमारे कोर्ट के पेपर्स में भी आए, जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं वहाँ पे पूजा अर्चना ही चल रही है, मतलब वो मस्जिद इज नॉट अ यूज्ड मस्जिद। और बल्कि यही लीगली हमारे फेवर में भी गया, हिंदुओं के फेवर में क्या गया कि द लॉन्गेस्ट पोजिशन किसके पास था, लॉन्गेस्ट प्रैक्टिसिंग पोजिशन किसके पास था। बल्कि काफ़ी 1800 में आते आते अंग्रेजों के समय का एक ऑर्डर जो काम में आता है कोर्ट केस में, अंग्रेज डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो एसपी को लिख रहा है कि कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, बंदोबस्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट केस का मतलब कि वो प्रैक्टिसिंग जगह है, वहाँ पे रामनवमी के दिन, राम के त्यौहार के दिन लाखों लोग उस स्ट्रक्चर के आसपास आ रहे हैं। और ऐसा कोई भी डिक्री, ऐसा कोई भी रमज़ान या किसी मुस्लिम फेस्टिवल के अराउंड नहीं, तो मस्जिद बना के तो छोड़ दी चढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ही नहीं थी उस एरिया में, वो तो बहुत दूर थी, मुस्लिम तो दिल्ली और अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थे। तो वो हमारे फेवर में आया और फिर वो चला। फिर 1949 में कुछ लोग कहते हैं रामलला प्रकट हुए, कुछ लोग कहते हैं रखे गए। लेकिन मजे की बात है, जो उसकी पहली पूजा अर्चना हुई वो किसने करी, वो जो अब मैं आपको कनेक्ट करूंगा, वो बड़ा कॉन्सिडेंस भी कह सकते हैं उसको, मैं तो उसको देवयोग कहूंगा, वो करी महंत दिग्विजयनाथ ने। महंत दिग्विजयनाथ कौन है, वो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, मतलब उनके गुरु के गुरु हैं। पहली अर्चना पूजा जो करी उसमें, वो महंत दिग्विजयनाथ ने, गोरखपुर से अयोध्या करीब 2 घंटे का रास्ता है और वो बहुत एक्टिव थे महंत दिग्विजयनाथ। महंत दिग्विजयनाथ ने पहली पूजा करी, ठीक है। अब जब वीएचपी मूवमेंट शुरू करती है, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 1949 से हम 1984 के आसपास आते हैं, जब वीएचपी विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में बड़ा एक मुहिम चलाती है,
मूवमेंट चलती है
कि हम राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब अशोक सिंघल जी का कहना था कि मैं इसका लीडर नहीं रहूंगा, कोई एक संत ही इसका लीडर रहेगा। तो कौन लीडर बनता है उसका, उसका जो जितनी भी समितियां बनी, अलग अलग नाम थे उनके, राम मंदिर समिति, राम निर्माण समिति, जो जितनी भी समितियां बनी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे महंत अवैधनाथ कौन है, वो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, जो सीधे सबसे पहले गुरु हैं। तो महंत अवैधनाथ वीएचपी का सबसे पहला मूवमेंट शुरू करते हैं, और जब पहली बार मूर्ति प्रकट हुई थी तो महंत दिग्विजयनाथ थे, और आज जब मंदिर बन रहा है तो योगी आदित्यनाथ इतने बड़े पद पे हैं। वो महंत तो हैं ही गोरखनाथ मठ के, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, जो अगर मैं अगर पॉपुलेशन की नज़र से देखूँ तो 5वां या 6ठा सबसे बड़ा देश है विश्व का, उतने बड़ी जगह के वो लीडर हैं। एक तो ये देवी हुआ, दूसरा देवी योग ये तो हो गया वीएचपी की तरफ से, मतलब एक संगठन समाज की तरफ से। पॉलिटिकली इस टॉपिक को जब वीएचपी ने छोड़ा तो कोई से टच नहीं करना चाहता था, बोलते नहीं ये तो बहुत कम्युनल टॉपिक है। बीजेपी डिसाइडेड 1989 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर की जगह, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर बीजेपी का बड़ा अधिवेशन हुआ। तो बीजेपी ने उस अधिवेशन में इस एजेंडा को अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर लिया कि अब से हमारे हर मैनिफेस्टो में इस पे जो भी हम वेट ऐड कर पाएंगे, जो भी हम सरकारी रूप से कर पाएंगे, जो भी हम लीगल रूप से कर पाएंगे, ये मुद्दा और तब से लेकर 1989 से लेकर जो 2019 का इलेक्शन हुआ है वो तब से, चाहे वो कोलेशन सरकार बनाई उन्होंने जो भी बनाई, तब से वो बीजेपी के एजेंडा में है। और जो जब जब राजनीतिक रूप से लिया उसका तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी यात्रा शुरू करी 1990 में,
रथ यात्रा
शुरू करी जो सोमनाथ से लेकर उसको जाना था अयोध्या तक। तो लेकिन इसमें जो मैं जो देवयोग के कॉन्सिडेंस बता रहा हूँ, इस पूरी यात्रा का जो मैनेजर थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरी यात्रा की कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, कौन सा व्हीकल, कौन साथ चलेगा, और आपको देखेंगे भी नरेंद्र मोदी यंग से दाढ़ी के साथ, काली दाढ़ी के साथ, वो साथ में आपको जब भी आप अडवाणी जी की फोटो देखेंगे तो साइड में आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे। तो सामाजिक धार्मिक रूप से महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो एक जो धार्मिक रूप से आती है, और जो आंदोलन चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी शुरू से जुड़े हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये देवयोग है।
फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताओ कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इस फेवर में जो बोला कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल हैपन,
जी
तो क्या ग्राउंड्स पे वो पता चला,
जी जी
किस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ?
जी जी जी,
क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन जो है, एक साइड बोल रही है कि वहाँ पे एक्स बनना चाहिए, दूसरी साइड बोल रही है वहाँ पे वाई बनना चाहिए,
जी जी,
और ये काफी टाइम से चलते आ रहा है, राइट? तो लीगल आपने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट। तो इस मोमेंट में लीगल स्टैंड पॉइंट से कैन यू हम लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो?
जी जी, मैं कोशिश करता हूँ आसान भाषा में समझाने में। जैसे मैंने कहा, ये केस पहले हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा एनालिसिस करा और उसका वर्डिक्ट दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया 30 दिन 40 दिन मेरे ख्याल से।
हाई कोर्ट ने 3 कर दिया था ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड,
दो पार्ट हिंदू, एक पार्ट मुसलमान, निर्मोही अखाड़ा को एक पार्ट, रामलला विराजमान को एक पार्ट, एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट उसको भी रिव्यू करा जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसमें हाई कोर्ट के इनपुट्स भी हैं, वो किस बेसिस पे है? उसमें बहुत सारे बेसिस हैं, और उसमें ये नहीं प्रूव करना है, मतलब ये भी प्रूव करना है लेकिन लार्जली ये नहीं प्रूव करना है कि राम पैदा हुए नहीं हुए। ये टाइटल सूट है। टाइटल सूट मतलब ऐसा है कि मैं आपके घर पर कब्जा कर लेता हूं और आप मेरे अगेंस्ट में केस करते हैं, बस यही है। टाइटल सूट क्या होता है? टाइटल किसका है, किसके नाम पे वो खाता चढ़ा है, किसका कब्जा है उस पर। अब जो कब्जे का केस होता है उसमें एक टर्म होती है एडवर्स पोजीशन,
ओके,
है ना, या फिर चलिए एडवर्स पोजीशन को छोड़ते हैं, लंबा कब्जा किसका है, या लंबे समय तक उस स्थान पे कौन था। तो दोनों पक्षों को यह प्रूव करना था कि लंबे समय पे वहां था कौन। देखिए हिस्टोरिकल चीज है, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स काम आए वो आपको सुनने में मजा आएगा। तो पहले तो 1528 के पहले मंदिर था, ये कैसे पता लगेगा? यानी पहले था, पहले होना चाहिए, कोई फोटो तो थी नहीं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम था नहीं, तो कहाँ से आता? गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव मंदिर गए, वो आपको गुरु नानक देव के अकाउंट्स में मिलता है, जो भी सिख अकाउंट्स उसमें मिलता है कि गुरु नानक देव मंदिर गए, उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी और वहाँ पे अकाउंट आता, यानी मंदिर था तभी तो गुरु नानक देव ने पूजा करी, तो वो हुआ कि हाँ 1528 में मंदिर था। फिर वो तोड़ा गया, फिर 1528 के बाद के जो ट्रैवलर्स हैं वो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, वो क्रिश्चियन ट्रैवलर्स हैं, जेसुइट हैं एक, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक तो जो स्ट्रक्चर है उसको भी वो मंदिर ही कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, उस जो मस्जिद बन चुकी है अब तो
1915
मस्जिद बन चुकी है, लेकिन वो स्ट्रक्चर मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है, और मंदिर को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ा गया है, जो कसौटी पिलर हैं 16 वो मंदिर के ही लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारी मूर्तियां बीच में जो एम्बेडेड मूर्तियां उसी दीवार में लगी हुई हैं, और वहाँ पे पूजा अर्चना हिंदुओं की चल रही है। वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हिंदुओं को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो पूजा अर्चना चलती रही। उस पूजा अर्चना के अकाउंट्स बहुत सारे ट्रैवलर्स ने बताए। फिर 1885 में करीब एक पिटीशन होती है, एक निर्मोही अखाड़ा के एक संत पिटीशन करते हैं कि हमें जहां रामलला की मूर्ति है, क्योंकि सब तो टूट चुका था, वहां पे कैनोपी बनाने की इजाजत दी जाए। कैनोपी मतलब एक छोटा सा शेड बना दिया, हम ना एक त्रिपाल छतरी सी सीमेंट की, या मतलब पक्की छतरी बना दी जाए। और उस समय गोरों की सरकार थी, तो गोरो के जब कोर्ट में गया तो उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन ये इतनी पहले हुआ है कि हम इसका अब कुछ नहीं कर सकते, अब जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन उन्होंने दो बाउंड्री बना दी, एक रेलिंग बना दी, वो रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है केस में, कि इनर कोर्टयार्ड में ये पूजा करेंगे, आउटर कोर्टयार्ड में ये पूजा करेंगे, मतलब कहाँ मुस्लिम पूजा करेंगे, कहाँ हिंदू पूजा करेंगे। तो उन्होंने डिस्टिंग, और उसमें पूजा होती रही, सालों पूजा होती रही। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डीएम का ऑर्डर एसपी को, वो भी काम आया हिंदू पक्ष को, कि वो कह रहा है कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, कल सीता विवाह है, सीता विवाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सीता विवाह है, कल दीपावली है, इतने लोग आने वाले हैं। लेकिन ऐसा किसी भी मुस्लिम फेस्टिवल में नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है कि किसका पोजीशन था, कौन वहाँ पे प्रैक्टिसिंग है। फिर मजे की बात है कि जब आपको कोई भी पोजीशन होल्ड करना है, जिसको आप अपना कब्जा दिखाने, तो वो कब्जे में तीन टर्म होते हैं, इट शुड बी अनइंटरप्टेड, इट शुड बी कंटिन्यूस, इट शुड बी अनडिस्प्यूटेड। अगर आपका एक 12 साल, वैसे 12 साल माना जाता है एडवर्स पोजिशन को, 12 साल तक आपका ऐसा पोजिशन है तो वो पोजिशन आपका हो जाता है। और फिर उसमें स्कंद पुराण से श्लोक आया कि कहाँ पे राम जन्मभूमि है, सरयू से कितनी दूर, इससे कितनी दूर, तो वो हमारे स्क्रिप्चर से, तो इट्स ए ट्रायंगुलेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स कि गुरु नानक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो मुस्लिम रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो ट्रैवलर्स आए हैं वो भी यही कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट पोजिशन भी आपके पास है। फिर आर्कोलॉजी में नीचे एक मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, जो डीएम की रिपोर्ट है पहली उसमें भी देखते हैं मंदिर के सिंबल है, वो सब मिला के वर्डिक्ट दिया गया कि यहाँ पे राम जन्मभूमि, ये राम जन्मभूमि है और इसमें मंदिर बनना चाहिए। और जो जमीन थी पूरी 2.5 एकड़ की, वो करीब 2.64 एकड़ की, और जो पूरी 67 एकड़ की जो जमीन जो सरकार ने एक्वायर करी थी उसके लिए, वो पूरी मंदिर को दे दी गई है। और मंदिर को दे दी गई और कहा गया कि एक ट्रस्ट बनाई जाए जिसको आज हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बोलते हैं, जिसकी तरफ से इन्विटेशन आ रहे हैं।
ओके, एंड आपने बात करी अबाउट फंड्स
जी,
कि ये जो पूरा मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है
जी,
वो पूरा डेवलपमेंट एक ट्रस्ट के थ्रू हुआ है, जिस ट्रस्ट ने फंड रेस किया,
जैसे आज की भाषा में क्राउड फंडिंग
के बेसिस पे, राइट? तो ये गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, क्राउड फंडिंग के वजह से। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की गई और जो बचे हुए फंड्स हैं उसका कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि व्हाट आई रेड कि 900 करोड़ के आसपास लग चुके हैं मंदिर बनाने में और 3000 करोड़ से ज्यादा अभी भी कलेक्ट हुए हैं, पड़े हुए हैं बैंक में।
बिल्कुल 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 ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यूअर के मैं आ सकता, भाई आपने ज्यादा पैसे बना लिए, मंदिर तो 1000 करोड़ का बना, 2000 करोड़ तो आप ले जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी कोई ट्रस्ट बनती है तो ऑडिट होती है, और ये ट्रस्ट तो और ज्यादा स्कैनर में रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, हर आदमी उसमें इधर से उधर से देखेगा कि क्या है। तो जो मैं सुनता हूं, चंपत राय जी जो ट्रस्ट के एक बड़े शीर्ष व्यक्ति हैं, उनके बड़े बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं, कई इंटरव्यू आए हैं। तो जो अभी जो मंदिर 22 जनवरी को खुल रहा है वो केवल राज पहला फेज है, मंदिर में बहुत कुछ होना है, उसमें म्यूजियम बनेगा, उसमें हॉस्पिटल बनेगा, उसमें खाने की जगह बनेगी, अभी भी खाने की जगह लेकिन छोटी जगह है, जब आप जाएंगे, जैसे आपको बताओ काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वहाँ अन्नपूर्णा देवी की एक किचन है एक तरह से, उसमें आप कोई भी जाके मुफ्त खाना खा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं बनती जाएंगी, ये पहला फेज है, शुभ मुहूर्त था तो इसका लॉन्च हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप दर्शन कर पाएंगे अगले दिन से, कोई भी व्यक्ति भारत का दर्शन कर पाएगा। लेकिन मंदिर बढ़ता जाएगा और जैसा मॉडल देख रहे हैं वैसा अभी हमें मंदिर उतना वैसा नहीं दिखेगा, उसकी कुछ चीज़ें भी बची हैं। तो मंदिर बनने में एक तो काफ़ी पैसे लगेंगे और मंदिर के आसपास की विधाएं, धर्मशाला, लोगों के रुकने का, लोगों के भोजन का, वो चलता रहेगा, और कुछ कॉर्पस ऐसे भी रहेगा मेंटेनेंस का, और जो कॉर्पस फंड होता है जिससे आप उसको मेंटेन कर पाएँ, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल पाएँ, उसमें जो पुजारी हैं, अर्चना है, उसको सुचारू रूप से चला पाएं, तो वो बहुत ऑडिटिक बहुत अच्छे से होगा। उसमें बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर निपेंद्र मिश्रा जी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हुआ करते थे, वो भी ट्रस्ट का पार्ट है, तो वो बहुत सुचारू रूप से बहुत स्वच्छता से चल रहा है ट्रस्ट।
इस ट्रस्ट के जो इस ट्रस्ट को पूरे इस प्रोग्राम को जो हेड कर रहे हैं
जी,
वो निपेंद्र मिश्रा जी हैं।
निपेंद्र मिश्रा जी
एंड वो प्राइम मिनिस्टर के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं
जी 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 जी।
सो हाउ वाई डू यू थिंक कि वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और उनको ही क्यों चुना गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए?
मेरे ख्याल से
वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री।
निपेंद्र मिश्रा जी, अगर आपको पता हो, जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको लिया था तो वो रिटायर हो चुके थे, तो उनको रिटायरमेंट के बाद बुला के एक तरह से ट्राई का रूल चेंज करके उनको लिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज ना, जैसे कुछ लोगों का मतलब केवल आप यू हायर देम फॉर द ब्रेन, राइट?
तो क्या खासियत है, आपको क्या लगता है?
हाँ, देखते हो तो करियर डिप्लोमैट हैं उनके, वो उत्तर प्रदेश में बहुत समय रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक रह चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत समय से रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से कि वो एक वेटरन ब्यूरोक्रेट है, अब रिटायर हैं, उनकी सेवा भी सेवा समाप्त हो चुकी है, तो एक व्यक्ति ऐसा जो धन को देख पाए, जो कानून को देख पाए, जो सरकार की तरफ से, जो सरकारी उसमें क्या नियमावली हो सकती है उस तरह से उसको मैनेज कर पाए, तो एक व्यक्ति रखना था, तो मेरे ख्याल से इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट इसलिए उनको रखा गया उसमें।
हर जगह हम हर मंदिर में जब देखते हैं
जी,
तब राम भगवान, लक्ष्मण, सीता, साथ में उनकी मूर्ति रखी रहती है वहां पे, राइट? इस मंदिर में जो एकदम सेंटर है, जो एकदम सेंटर है, वहां पे 5 ईयर ओल्ड राम की मूर्ति रखी गई है।
जी जी,
राइट? ऐसा क्यों है?
ये आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें मैंने केस भी कहा कि केस किसने लड़ा? राम लला ने लड़ा। ये हम राम जन्मभूमि की लड़ाई थी। राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा हुए। तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द फ्यू या शायद ओनली मंदिर है जो राम लला का मंदिर है।
एग्जैक्टली।
अगर मैं आपसे राम कहता हूं, मैं आपके व्यूअर्स से अभी बोलता हूं कि मैं आंखें बंद करिए बोलिए राम, तो क्या दिमाग में आता है? तीर लेके राम या राम दरबार के राम? कभी बालक राम नहीं आता। बालक हमारे बालक कृष्ण दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमने कृष्ण की लीलाएं देखी हैं। कृष्ण को मक्खन खाते, मोर लगाए, अपनी माता को तंग करते, अटखेलियां करते, वो कृष्ण रूप देखा है। लेकिन राम की अटखेलियां और राम का बाल रूप हमें ज्यादा वर्णन नहीं किया, वाल्मीकि ने भी बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया। तो ये इसलिए और इमोशनल मोमेंट है कि आप एक छोटे बालक को आपने उसके घर से निकाल दिया और वो अपना वो रामलला विराजमान, मतलब एक तरह से रामलला द चाइल्ड राम वाज स्टैंडिंग इन कोर्ट एंड फाइनली गॉट हिज हाउस बैक राइट विच इज अ टेम्पल फॉर ऑल ऑफ अस. तो इसलिए वहां रामलला है और राम छोटे राम और उनके तीनों भाई और चारों उनकी जो छोटी मूर्ति है वो और बाकी अब तो पत्थर की मूर्ति भी लगेगी वहाँ पे, ब्लैक स्टोन की एक मूर्ति या वाइट स्टोन की मूर्ति लगेगी. तो इसलिए रामलला है वहाँ पे. तो राम के बाल रूप का ये मंदिर है जो भारत में रेयर मिलेगा आपको, जो राम बाल के राम रूप का आपको आपको उनके जो प्रौढ़ रूप है, जो जो भगवान राम है, जो सियावर राम है, जो धनुधारी राम है, उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी आपको अधिकतर.
व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि लगभग 30 साल से जो भक्त लोग हैं वो सब इसकी ब्रिक्स इकट्ठी कर रहे हैं.
हाँ राइट.
वो 30 साल से 2 लाख से ज्यादा ईंटें इकट्ठी करके रखे थे कि हम तो वेट कर रहे थे डिसीजन जिस दिन आएगा मंदिर बना.
हाँ इट्स अ लिटिल मोर नुआंस्ड टू इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन. हाँ आप पूछिए फिर.
हाँ मतलब ये तो मैं बोला कि इन ब्रिक्स को प्रिजर्व कैसे करके रखी और इनका उपयोग कैसे हुआ.
हाँ देखिए, जब VHP ने मूवमेंट शुरू करा, मैंने कहा ना 1984-1980 में जब VHP ने मूवमेंट शुरू करा तो उस समय कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत लिमिटेड होते थे, तो आपको हर चीज़ फिजिकल करनी होती थी और कैसे पूरे जनता का मूवमेंट बनाया जाए. देखिए राम में आस्था सबकी है, सब श्री राम के मंदिर जाते हैं, विष्णु के विष्णुदेव के, राम उनके सातवें अवतार हैं तो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सबको कैसे इन्वॉल्व करा जाए. तो उसमें दो काम करे गए, एक तो केवल देश से नहीं दुनिया से कहा गया कि आप एक एक ईंट भेजें और उस पर श्रीराम लिख के भेजें, है ना. जैसे कहा जाता था कि जब जब वो राम सेतु बना तो श्रीराम अगर आपने पत्थर पर लिख दिया तो पत्थर तैर गया, है ना. तो आप श्रीराम लिख के भेजें तो, और फिर वो एक कार्यशाला बनाई गई अयोध्या में जो आज भी है, कार्यालयपुरम है, और कार्यशाला बनाई गई जिसमें सारी ईंटें कोई लेके आया, किसी ने पोस्ट से भेजनी, किसी ने कुरियर से भेजनी, किसी ने अपने आप, पूरा एक कार्यक्रम हुआ. मान लिया तमिलनाडु से आ रही हैं तो वहाँ पे पूरा कार्यक्रम हुआ और वो पहुँची, तो वो पूरी एक वॉल एक 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 ऐसे मतलब ब्लॉक की वॉल बना के कार्यशाला में रखी गई. और जब अभी तो क्योंकि सारी वो ब्रिक्स मंदिर में चली गई, जब वो वॉल थी उसके आपको चित्र बहुत जगह इंटरनेट में मिल जाएंगे, इतनी सुंदर लगती थी. उसमें हिंदी में लिखा है, उसमें तमिल में लिखा है, उसमें तेलुगु में लिखा है, उसमें सब में श्रीराम 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 श्रीराम. महाराष्ट्र से लोगों ने भेजी हैं, उड़ीसा से लोगों ने भेजी हैं, बल्कि ऐसा है कि विदेशों से लोगों ने भेजी हैं. आपको एक बात बीच में मजे की बात बताऊंगा, देखिए राम केवल भारत के प्रणेता नहीं है, राम इस विश्व के हीरो हैं. कैसे? थाईलैंड, थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड में आज भी राजा होता है, मतलब वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है और साथ में राजा भी होते हैं. उनके राजा की पदवी राम है, उनको रामा वन रामा टू अभी राजा द रामा द टेन चल रहे हैं इस समय, जो भी है उनका उनकी टाइटल रामा द टेन, मतलब रामा वॉज द एपिटमी ऑफ किंगशिप, मतलब रामराजी की एपिटमी थी कि वो टाइटल ही बन गए. इजिप्ट की जो सभ्यता है उसमें राजा को रामसेस कहा जाता था. मजे की बात तो और लीजिए, इंडोनेशिया जो 90% इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे सबसे बड़ी रामलीलाएं होती हैं आज भी. एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है पब्लिकली कि वो एक बार गए वहाँ पे, जब शायद विदेश मंत्री थे, तो उनकी बात हुई कि भाई आप तो मुस्लिम देश हैं, ये क्यों हो रहा. बोलते हैं हम, मेरी फेथ इस्लाम है लेकिन मेरी जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो राम में जुड़ी है. तो वहाँ पर भी रामायण है, वहाँ पर यहाँ पर तो नेशनल बुक, थाईलैंड की नेशनल बुक इज रामायण, इट्स कॉल्ड रामाकियन. इंडोनेशिया की नेशनल बुक इज रामायण, नॉट नेशनल बुक बट वहां पे अपनी रामायण फॉलो होती है जो काकाविन रामायण है. तो उन देशों से भी, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, फिलीपींस से, श्रीलंका से, दुनिया के अलग अलग देशों से भी ब्रिक, जिसमें श्रीराम अपनी अपनी भाषा में लिखा है, वो सारी ये जो मैंने VHP की जो कार्यशाला है जहां पे वो मॉडल रखा है लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो वाला मॉडल समझ गया मॉडल, जो मॉडल दिखता भी है, जो बिरला जी के आर्किटेक्ट ने बना के दिया, वो मॉडल रखा है लकड़ी का. और एक तो ईंटें इकट्ठी हो रही हैं, फिर जैसे बच्चों का लेगो गेम होता है ना, जोड़ जोड़ के बनाते हैं, तो ये जो मंदिर है इस समय, जैसे हमने बताया नागर शैली में बना है, इसमें लोहा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ब्लॉक की तरह बना गया, ये ब्लॉक को दूसरे लिंक से जोड़ दो, तो वो जो ब्लॉक्स हैं पिलर के, वो मार्क करके बन रहे हैं पिछले 30 साल से, और वो स्टोन पूरे तराशे जा रहे हैं. वहाँ पे कई कारीगर लगे हैं जो तराश रहे हैं, और वो पिलर अब साफ होके और उनकी मतलब जो स्टोन की पॉलिश होके वो मंदिर में लगे हैं सारे स्टोन. तो पिछले 30 साल से कार्विंग चल रही है, पिछले 30 साल से ईंटें इकट्ठी हो रही हैं, जिससे इसको जन जन का मूवमेंट कैसे बना जाए.
वैसे इन सब से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात करी थी कि उससे अयोध्या की यूपी की रिलीजियस टूरिज्म में इन सब में बहुत हेल्प होगी. राम मंदिर से सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए बहुत 500 साल की जो लड़ाई है वो तो उसके सामने हम खड़े हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो तो है, बट इसके साथ साथ बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाली है, बहुत लोगों का घर भी बनना है, बहुत इनकम जनरेट होने वाली है.
बिल्कुल
राइट. तो इससे यूपी को रिलीजियस टूरिज्म में कैसे हेल्प होगी, कितना बड़ा ये
या बहुत सही सवाल पूछा। जिस दिन राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था 2019 नवंबर में, मैं चैनल में ही था और किसी ने पूछा चैनल पे, शायद कोई वामपंथी कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा भाई हो गया तुम्हारा राम मंदिर वाम मंदिर, कैन वी टॉक इकॉनमी नाउ, मतलब ये सब हो गया, अर्थव्यवस्था पे बात करें, जॉब पे बात करें। और मैंने तभी कुछ समय पहले लक्ष्मी नामा किताब पढ़ी थी, और ना भी पढ़ी हो तो अगर आप देखें भारत में आज 200 से 250 टाउन ऐसे हैं, भारत के बड़े टाउन ऐसे हैं जो केवल टेम्पल टाउन इकॉनमी पे चलते हैं, और छोटी मोटी नहीं बड़ी इकॉनमी। तिरुपति, तिरुपति बालाजी जो समय आंध्र प्रदेश में आता है, वो अकेले अकेले में प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इकॉनमी है। श्रीडी जो महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में
3,000 करोड़ पर ईयर,
पर ईयर की इकॉनमी है। श्रीडी जो पास में है, छोटा मंदिर है, वो कम से कम 500 करोड़ की इकॉनमी है। मैं बताता हूँ आपको, बल्कि एक यात्रा होती है कांवर यात्रा
हमारे अंदर बहुत होती है,
जो 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 आप अपने पास की नदी का जल लेके जाके किसी शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। जो नॉर्थ में लोग हैं वो नीलकंठ में लेके जाते हैं, कुछ काशी विश्वनाथ में लेके जाते हैं, कुछ आप इंदौर के हैं तो इंदौर के पास उज्जैन महाकाल लेके जाते हैं। वो जो कांवर यात्रा है वो केवल नॉर्थ में सबसे बड़ी, वो केवल 200-250 करोड़ की इकॉनमी है। और बाकी आप कोई टेंपल टाउन पकड़ लीजिए, टेंपल टाउन में देखिए क्या क्या इकॉनमी होती है। उसमें जो पंडित हैं उनकी इकॉनमी होती है, बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, जितनी पूजा सामग्री होती है उसकी इकॉनमी है, वहाँ पे रहने की, वहाँ पे खाने की, वहाँ पे होटल से लेकर धर्मशाला की, वहाँ पे टैक्सी की, वहाँ पे जो फ्लाइट चलती हैं, वहाँ पे जो ट्रेन चलती हैं, वहाँ जो टैक्सी चलती हैं, हर फ्लावर्स की बहुत बड़ी इकॉनमी। अब तो बहुत सी नई स्टार्टअप आ गई जो चढ़े हुए फ्लावर्स हैं उनसे वो अगरबत्ती बना रहे हैं, जिससे उनसे पॉल्यूशन भी ना हो, मेरे ख्याल से फूल कुछ ऐसा नाम है। तो टेम्पल अपने आप में बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो मैंने यही बताया, उन्होंने कहा ना भाई इकॉनमी हो गई, मैंने कहा नहीं, इकॉनमी से तो आपने महरूम रखा हुआ था, आपने तो वंचित रखा हुआ था अयोध्या को एक आर्टिफिशियल केस के द्वारा। अब तो केवल अयोध्या नहीं, पूरा पूरा जो पूरब का उत्तर प्रदेश है जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, बल्कि बिहार के बहुत सारे टाउन वो तर जाएंगे। तो केवल राम जी की कृपा नहीं होगी, अब साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी होगी। तो और एक और छोटी सी बात बताऊंगा, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और केस उस समय कोर्ट में था। सबको अंदाजा था क्योंकि एविडेंस सामने थे कि क्लिंचिंग एविडेंस है, अगर कोर्ट ने सही वर्डिक्ट दिया तो ये राम मंदिर के पक्ष माना चाहिए, लेकिन मंदिर तो 2019 में वर्डिक्ट आया। 2017 से ही योगी आदित्यनाथ ने, शायद उनके मन में ऐसा आ गया था, उन्होंने रामलला के स्वागत की तैयारी कर ली थी। वो कैसे कर ली थी, उन्होंने सबसे पहले अयोध्या जो टाउन था उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर दिया, उसका मेयर होने लगा। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं तो आपको फंड ज़्यादा आते हैं। वो फंड से क्या, उसका स्ट्रीट, उसकी उसके घाट, उसकी लाइट्स, उसका सीवेज, वो उसके घाट, वो सब इम्प्रूव होने लगे। फिर उन्होंने पहले ही साल में क्या करा, बल्कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, अब तो फ्लाइट चलने लगी है, आपको पता है प्रधानमंत्री ने अभी पहली फ्लाइट का इनॉग्रेशन भी करा, फ्लाइट चलने लगी है, मुंबई से भी सीधी फ्लाइट है, दिल्ली से फ्लाइट है, अहमदाबाद से फ्लाइट है। बहुत सारे लोगों को भारत में यही नहीं पता था अयोध्या है कहाँ, मतलब पता था उत्तर प्रदेश में लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है क्यों नहीं पता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि अयोध्या एक विवादित जगह है, वहाँ तो दंगे होते हैं, क्योंकि अयोध्या में परसों कोई बड़े दंगे नहीं हुए, अयोध्या के कारण शायद कहीं और दंगे हुए हैं। अयोध्या तो बड़ा शांत टाउन था और अयोध्या में राम मंदिर तो अब बनने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 8,000 बड़े टेंपल, छोटे बड़े टेंपल है। वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा टेंपल है हनुमानगढ़ी, बल्कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी एक तरह से डोर कीपर है, तो आप हनुमान जी के दर्शन करें फिर राम जी के दर्शन करें, ऐसा। तो उस इकॉनमी को महरूम रखा गया। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, 2017 में बनते ही दिवाली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली पे दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया कि दिए जलाए जाएंगे, और वो कि तेल बाती के दिए, वो आर्टिफिशियल वाले कोई इलेक्ट्रिक दिए नहीं। और पहली बार जो पहले साल में 1,00,000 दिए जलाए गए, 1,00,000 दिए जलाए गए, और किसी इंडोनेशिया की रामायण, मलेशिया की रामायण, भारत के अलग भागों से जो रामलीला के मंचन है वो करा, एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया वो। तो बहुत सारे मीडिया वाले जान लगे, बहुत सारे टूरिस्ट जान लगे। देखिए श्रद्धालु और टूरिस्ट में डिफरेंस है, श्रद्धालु तो आप कांटे भी बिछा देंगे तो जाएगा, वो तो अखिलेश यादव के समय में भी जाता था, लेकिन टूरिस्ट के साथ फायदा क्या है, शहर को पैसा लेके जाता है। एक टूरिस्ट जाता है तो कम से कम 5,000-10,000 रुपये खर्च के आता है, तो शहर की इकॉनमी बूम होती है। बड़ा टूरिस्ट जाता है, विदेश से आएगा तो, और वो आपके देश में भी खर्च करेगा और शहर में भी खर्च करेगा। तो जैसे आने लगा तो मीडिया जाने लगा, मीडिया जाता है तो एक एक मीडिया वाला जाता है कम से कम 5-5, 6-6 लोगों के साथ, 10-10 लोगों के साथ, बड़े बड़े सेट लगने लगे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं पहले कभी मेक माई ट्रिप इन सब में होटल ढूंढता था तो एक होटल दो होटल आता था, अब वहाँ पे 2,500 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया उस लेवल का। तो अयोध्या की जो इकॉनमी है वो तो 2017 से ही तर गई, अब तो इतना मुश्किल हो गया वहाँ होटल मिलना मुश्किल हो गया। अब पता लगा है कि वहाँ पर ताज भी प्रॉपर्टी बना रहा है, मैरिट भी प्रॉपर्टी बना रहा है, अब वहाँ पर बड़े होटल भी आ रहे हैं, बड़ी धर्मशाला भी आ रही है, बड़ी खाने की जगह भी आ रही हैं, बड़े टूर पैकेजेस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो टेम्पल इकॉनमी है भारत की, जो टेम्पल टाउन इकॉनमी है, उसका हिस्सा एक आर्टिफिशियल केस के थ्रू अयोध्या को उस इकॉनमी से वंचित रखा गया था। अब वो लक्ष्मी जी की कृपा है, वो बहने लगेगी इसके बाद से।
कितनी बड़ी टेंपल टाउन इकोनॉमी होगी इंडिया में लगभग,
कि अगर जो सबसे बड़ा टेंपल है जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो 3,000 करोड़ है, और आप अगर एवरेज भी मान लो 100-200 करोड़ और उसको आप 200-250 टाउन से इंटू कर दो तो उतनी बड़ी तो इकोनॉमी है ही है, कम से कम 5-10,000। मैं आपको एक छोटा सा सूचकांक देना चाहूँगा, कुंभ मेला होता है प्रयाग में, होता है उज्जैन में, होता है नासिक में, होता है हरिद्वार में, होता है चार जगह होता है। पिछली बार जब प्रयाग में कुंभ मेला हुआ जबकि वो अर्ध कुंभ था, उसमें 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगाया, और बहुत सारे लोगों ने विवाद कहा कि हिंदू फेस्टिवल में आपने इतना पैसा, फिर एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने या कुछ जो जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने स्टडी करी कि उस 4,000 करोड़ ने 1,00,000 करोड़ की इकॉनमी पैदा करी। मतलब अगर एक बिल्कुल श्रद्धालु भी आ रहा है, वो एक पानी की बोतल खरीद रहा है, एक पूड़ी छोले खा रहा है, 4 कलावे खरीद रहा है, कंगन खरीद रहा है, 500 रुपये भी खर्च कर रहा है, तो इतना करोड़ों श्रद्धालु आता है कुंभ मेले में कि वो कम से कम 1,00,000 करोड़ की इकॉनमी है। तो 4,000 खर्च करके आप 1,00,000 करोड़ की इकॉनमी तो केवल कुंभ जनरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नंबर अच्छी स्टडी है, एंड मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम आज के जो हमारे डेटा क्रंचिंग वाले लोग हैं डेटा क्रंचिंग है, कि भारत की टेंपल इकॉनमी या भारत की रिलीजियस इकॉनमी कितनी बड़ी है, मेरे ख्याल से अच्छा नंबर है, और लोग कमेंट में लिखें तो आनंद आएगा।
एक थ्योरी चल रही है इंटरनेट पर, वो रियल है कि फेक थ्योरी है, कोई एविडेंस है उसके पीछे की नहीं जी, मुझे पूछना है क्योंकि And specifically, I'm asking you, and I think you could be the right person to answer this.
जी.
क्योंकि ना अभी बहुत ये चल रहा है, जैसे योगी जी हैं जो शहर का नाम चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन एक्स वाई जी रीजन,
अभी गाजियाबाद का चेंज हो रहा है,
गाजियाबाद का चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज करते हैं, राइट। तो इन सब चेंज के पीछे, इन सब चेंज के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तब एक चीज पढ़ी कि ताजमहल को लोग बोल रहे हैं
जो महल,
हाँ ताजमहल जो एक हिंदू मंदिर था,
राइट,
तेजो महल है,
राइट
राइट। अब क्या ये थ्योरी है कि रियलिटी की
थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है, जब वो जमीन दी गई तो एक राजा ने दी, जो मुस्लिम भी मानते हैं कि राजा ने दी, उस समय का जो राजा था वहां तो राजा थे, राजस्थान में तो उन्होंने डायरेक्टली रूल करा नहीं कभी, राजस्थान में तो उन्होंने क्या करा,
उन्होंने आगरा तो यूपी में,
हाँ नहीं मतलब उस एरिया में वेस्ट में,
ओके,
तो इन्होंने वेस्ट के जितने लोग थे उनसे टाइप करा, उन्होंने कुछ जगह तो खुद रूल करा, कुछ जगह टाइप में रूल करा, तो एक राजा है बड़े उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने दिया, तो वहां पर संभावना थी एक छोटा मंदिर था वहां पर, लेकिन कुछ लोगों ने और थ्योराइज करा हुआ है कि वो जो तेजो महल है उसका पिलर के अंदर ये है, उसके अंदर जाने देते हैं। मैं आई थिंक ये जो पूरी थ्योरी है इसके बिलीफ में नहीं हूँ कि पूरा मंदिर था, लेकिन हाँ जब राजा ने मंदिर दिया था तो एक छोटा मंदिर था वहाँ पे, उसको उन्होंने कोएग्जिस्ट करवा रखा है, उसको हटा दिया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसका सर्वे पे कभी अलाउ नहीं होता, उसका सर्वे अलाउ नहीं होता है कभी, क्यों अंदर, क्योंकि आपको अगर ताजमहल आप गए तो अंदर बहुत जगह नहीं जाने देते हैं, जहाँ पे जो कब्र है वो भी आप नहीं देख पाते हैं, जो शाहजहां मुमताज की कब्र है,
क्यों नहीं देख पाते वैसे,
हाँ वो उन्होंने मना करा,
मैं गया हूं वैसे ताजमहल,
हाँ तो नहीं वो नहीं देख पाते हैं आप लोग, तो या फिर वो कहते हैं जो आप देख पाते हैं वो रिप्लिका है, ओरिजिनल अंदर है, तो लॉट ऑफ थ्योरीज अराउंड। तो आई थिंक जब भी ऐसी डूबियसनेस आती है ना तो आदमी का मन क्यूरियोसिटी क्या होती है, ठीक है मुझे सर्वे करने दो।
Exactly.
तो अभी जो दो बड़े केस चल रहे हैं वो ज्ञानवापी का केस चल रहा है और मथुरा केस चल रहा है, तो ज्ञानवापी के केस में जो 24 अगस्त को रिपोर्ट भी आने वाली है उसमें सर्वे अलाउ करा कोर्ट ने सबसे पहले कि एक मजिस्ट्रेट के अंदर टीम बनेगी और वो वीडियो और कलर्ड फोटो रिकॉर्डिंग करेंगे और उस सर्वे देख के आएंगे। वो सर्वे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अयोध्या का सबसे पहला जो केस है वो सर्वे शुरू हुआ था, सर्वे में देख रहे हैं हनुमान जी मूर्ति लगी है या गरुड़ा की मूर्ति लगी है या पिलर लगा है जिसमें हाथी बना है, जो हिंदू सिंबल्स है वो लगे हैं। तो उससे एक बात तो है कि मस्जिद तो है लेकिन ये मंदिर तोड़ के बनाएगी, उसके लिए आपको कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, वो आंखों से दिख रहा है आपको। तो इसलिए अब सर्वे इसका भी अलाउ हो गया है, मथुरा का भी अलाउ हो गया, काशी का तो हो गया, रिपोर्ट भी सील्ड एनवेलप पर है, 24 अगस्त को कोर्ट उसको रीड करेगा बताएगा। तो इसका सर्वे आज तक अलाउ नहीं हुआ ताजमहल का, लेकिन ताजमहल में कोई बहुत बड़ा मंदिर था ऐसा ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है कि बहुत बड़ा मंदिर था किसी सेट का। हाँ राजा ने जमीन दी तो हमारे यहाँ छोटे मंदिर तो गली गली में होते थे, जैसे मैं कह रहा हूँ अयोध्या में 8,000 मंदिर है, तो वी हैड स्मॉल टेम्पल्स एवरीवेयर, तो वहाँ पर छोटा मंदिर होने की संभावना है जिसको उन्होंने सब्स्यूम कर दिया या तोड़ दिया, ये पॉसिबिलिटी है। और एक छोटी सी बात जो आपने नाम चेंज कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नाम चेंज नहीं हुआ है, उनके नाम रिवर्ट बैक करें, जैसे प्रयाग का नाम जो इलाहाबाद से प्रयाग हुआ, प्रयाग तो बरसों से कहते थे, वहाँ की जो सबसे फेमस ट्रेन है उसका नाम प्रयागराज था, वो मैंने मतलब वो योगी जी ने रखा है, वो तो सदियों चला रहा है, वो प्रयाग का कुंभ मेला, प्रयाग का माघ मेला ही बोला जाता है उसको, इलाहाबाद में कुंभ नहीं लगता है, प्रयाग में कुंभ लगता है, तो उन नामों को रिवर्ट बैक कर रहे हैं।
तो राम मंदिर के मूवमेंट में
जी
एल के अडवाणी सर और अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या योगदान था?
देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो गठित इन दोनों ने करी, पहले उसके अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी, अब तो उन पर पिक्चर भी आ रही है मैं हूं अटल, मैंने सुना है, और लाल कृष्ण अडवाणी
पंकज त्रिपाठी सर
पंकज त्रिपाठी जी कर रहे हैं, और लालकृष्ण अडवाणी, और जब मैंने कहा कि पालमपुर अधिवेशन 1989 में बीजेपी ने इस मुद्दे को अडॉप्ट करा, पॉलिटिकली अडॉप्ट करा, कोई और पार्टी भी थी उस समय, कांग्रेस भी थी, जनता पार्टी के फैक्शंस भी थे, अलग अलग पार्टी थी, वो कोई अडॉप्ट कर सकती थी, सबने से किनारा करा, तो कमनल है, इससे मेरा मुस्लिम वोट छिटक जाएगा, क्योंकि सबके पास तो फॉर्मूला था कि एक एक हिंदुओं की कास्ट और एक मुस्लिम, ये मिला के मैं सरकार बनाऊंगा, जो सबने बनाई भी, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट करा। तो जब अडॉप्ट करा तो लालकृष्ण अडवाणी और निकला, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी यूज टू शो ए काइंड ऑफ अकोमोडेटिव फेस, कि मैं सबके लिए हूँ, अडवाणी वॉज लाइक ए काइंड ऑफ ए हार्ड लाइनर फेस। ये उन्होंने शायद या तो ये कॉन्शियस पोजिशनिंग थी, या तो ये कॉन्शियस पोजिशनिंग थी, या फिर ऐसा उनका दोनों का बिहेवियर था, ऐसा उनका एप्टीट्यूड एटीट्यूड था। तो इन दोनों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, लेकिन इनकी सरकार बनी तो ज़्यादा नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि कोलेशन सरकार थी, बहुत पुशन पुल्स थे, या अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से नहीं चल पाए। मैनिफेस्टो में था जो 96 में सरकार बनी, 98 में सरकार बनी, 99 में तीन बार अटल जी 13 दिन 13 महीने और 6 साल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों बार मुद्दे में था, उसको कुछ कर नहीं पाया उसके अराउंड, क्योंकि कोलेशन की गवर्नमेंट थी उसमें तो बल्कि आज जो ममता बनर्जी हैं वो मिनिस्टर थी, फारूक अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, बहुत सारे लोग ऐसे मिनिस्टर थे।
अटल जी की खासियत क्या थी, उनके बारे में पढ़ा है आपने, उनके बारे में देखा है ज़्यादा?
देखिए, अटल जी की खासियत थी उनकी ओरेटरी और उनका एक लॉन्ग लॉन्ग पॉलिटिकल करियर, है ना, मतलब वो कब चुनाव जीत गए थे, जो दूसरा चुनाव है भारत का तब से लड़ना शुरू कर दिया, 50-52 में पहला चुनाव, 57 में दूसरा चुनाव, तब से वो बलरामपुर और मथुरा से चुनाव लड़ते हैं, मथुरा से हार जाते हैं, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, दोनों उत्तर प्रदेश से, वैसे वो हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो आ ग्वालियर गए, तो ग्वालियर में उनकी पढ़ाई वढ़ाई हुई, और उन्होंने बलरामपुर से चुनाव लड़ा। तो 57 से लेके वो नेहरू के साथ भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के साथ भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वो राजीव गांधी के साथ भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नरसिम्हा राव, जो ये 4-5 बड़े कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, बाकी तो आए गए बहुत सारे, वो सबके साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी 1977 में, तब वो उसमें विदेश मंत्री हैं, वो पहली बार भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदी में भाषण दे रहे हैं यूएन में, तो इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, जिस एक वर्ड होता है जो हम कॉर्पोरेट में भी यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, कि इस इंस्टीट्यूशन की मेमोरी किसको है, पुराने एम्प्लॉय को होती है, क्योंकि आजकल तो चैनिंग इतनी ज्यादा कि 6-6 महीने में 1 साल में बच्चे नौकरी छोड़ते हैं। तो ही वॉज द वन जिसको इंस्टीट्यूशन नॉलेज भाजपा की नहीं, इस पूरे भारतीय समाज की, भारतीय राजनीति की थी, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि उस समय क्या अच्छा बुरा, ऊपर नीचे लड़ाइयाँ, चीन से लड़ाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्या फॉरन पॉलिसी रही, वो उसका एक लिविंग इंस्टीट्यूशन थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे ख्याल से ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, और उनकी एक्सेस थी हर पार्टी में, उनकी एक्सेस थी मीडिया के हर वर्ग से, तो एक कोलेशन गवर्नमेंट चलाने के लिए वो बहुत उपयुक्त है, मेरे ख्याल से यही उनकी एडवांटेज रही। मैं
तो योगी आदित्यनाथ जी, उनकी बायोग्राफी लिखी है आपने
जी,
और उस पर आप काफ़ी बातें करते हो हर जगह
जी,
तो मुझे पहले उस पर बताओ कि इतना जब पढ़ा, इतना देखा, साथ में रहे
जी,
तो इंट्रैक्शंस के बाद वो कैसे लीडर हैं, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज स्पेशल इन योगी आदित्यनाथ?
देखिए, लोग टॉपिक पे महारत हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, मैंने एक व्यक्ति पर रिसर्च करी है पिछले 6-7 साल, और मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें हैं योगी आदित्यनाथ पे, नाउ वी कॉल इट योगी ट्रायोलॉजी, द फर्स्ट वन बीइंग द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, जो उनकी डेफिनेटिव बायोग्राफी है, दूसरी 5 साल बाद आई उनके काम को दिखाते हुए कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, जिसे हम राम राज्य से इक्वेट करते हैं, द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, और तीसरी मैंने बच्चे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था संन्यास से पहले, सो अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिससे ग्राफिक नॉवल। तो इन 4 चीज़ों में मैं शायद योगी आदित्यनाथ जी को समराइज करूंगा। पहली चीज़, शायद उनके भगवा रंग से लोग उनकी उम्र नहीं देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज लीडर्स हु हैज स्पेंड 19 ईयर्स इन द पार्लियामेंट, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब 26 साल की एक्टिव राजनीति, वो भी मतलब द हेड ऑफ द थिंग्स, राइट, इज अ पार्लियामेंटेरियन इन नेशनल पार्लियामेंट एंड इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, विच इज अ पॉपुलेशन 24 करोड़, और उनकी उम्र है केवल 51। मेरा ये दावा है, और मैंने अभी तक, मुझे किसी ने गलत नहीं प्रूव करा, आई थिंक ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस यंगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। आप मुझे कोई पॉलिटिशियन बता दीजिए जो 51 साल का हो और अपने देश की नेशनल पार्लियामेंट में रहा हो 19 साल, और किसी इतने बड़े सूबे का, इतने बड़े स्टेट का, प्रोविंस का, जो भी कहते हैं विदेशों में, उसका हेड रहा हो 6 साल, और जिसकी पॉपुलेशन 24-25 करोड़ हो ना, मतलब ही इज रूलिंग एट बिग मास। तो पहली बात, ही इज़ ए यंग पॉलिटिशियन, राइट, ही इज़ ओनली 51। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब वो लोकसभा से विधानसभा में गए, मतलब वो अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, और उस समय यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, यूपी के लड़के, और जीत गए योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जोक मारा जब वो अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, पार्टिंग स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में, कि राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं और अखिलेश जी मुझसे एक साल छोटे हैं, मैं दोनों के प्लान्स के बीच में आ गया. मतलब विच इज फिगरेटिवली आल्सो ट्रू, ही वाज लाइक उनके एज उनके बीच में थी और उनके प्लान्स के बीच में मैं मुख्यमंत्री बन गया. तो पहली चीज़ वो यंग पॉलिटिशियन है, मतलब राहुल गांधी यंग है, अखिलेश यादव यंग है, लेकिन उनसे एक साल छोटा बड़ा आदमी यंग नहीं है, है ना. कभी कोई ये बोलता नहीं कि यंग चीफ मिनिस्टर बनाया मोदी जी ने एक, ना. पहली बात. दूसरी बात, ही इज अ वेरी 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 एक्टिव पार्लियामेंटेरियन व्हेन ही वाज इन पार्लियामेंट. देखिए पार्लियामेंट में जब आप एंगेजमेंट देखते हैं तो चार या पांच चीजों से देखते हैं. पहली चीज उनकी अटेंडेंस क्या है, दूसरा उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में कितना पार्टिसिपेट किया और कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं. इन सब में डेटा उनका नेशनल एवरेज से ऊपर है. अगर नेशनल एवरेज 80 का है तो अटेंडेंस उनकी 84 है. राहुल गांधी की अटेंडेंस है 40-50, अखिलेश यादव की 33 लास्ट पार्लियामेंट में. अभिषेक बैनर्जी जो ममता जी के भतीजे हैं, उनकी अटेंडेंस करंटली पता है कितनी, 13%. 33 टिकट्स मिलते हैं फ्री एक हर सांसद को आने जाने के लिए, 33 टिकट मिलते हैं आने जाने के. और राहुल गांधी घर से साइकिल से जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट, इतना पास है इन लोगों के घर ना, तब भी आपकी 50% अटेंडेंस है. तो इस व्यक्ति की अटेंडेंस कितनी, 80%, 85%. ये पार्लियामेंट में 350 क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि नेशनल एवरेज भी 200-250 का है. और किससे पूछ रहा है, नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, मतलब अपनी सरकार से पूछ रहा है कि गोरखपुर में एम्स कब आएगा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब आएगी, जैपनीज इंसेफ्टिलाइजर का इंजेक्शन कब होगा. और सारे क्वेश्चन केवल कल्चरली ड्रिवन नहीं है, वो राम मंदिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 370 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट वो ये भी पूछ रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूरिया सब्सिडी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब एवरी गैमट. बट हमने कभी ये देखे नहीं, हमने तो एक आध इलेक्शन की स्पीच सुन ली और कहा नहीं योगी आदित्यनाथ तो कमिनल है. तो उनका बॉडी ऑफ वर्क जो पार्लियामेंट में है दैट्स एक्सटेंसिव. अब देखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो लाइफस्टाइल था पहले मठ में, जो अब इधर ट्रैवल हो गया है, ही गेट्स अ वेरी अर्ली 3:30, बल्कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने एक जोक चला हमारे यहाँ यूपी में कि कौन जल्दी उठता है, मोदी जी या योगी जी, तो पता लगा योगी जी 10 मिनट पहले उठते हैं. मतलब मीनिंग बोथ ऑफ देम लिव अ वेरी 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 डिसिप्लिन लाइफस्टाइल. फिर वो अपना अपना फ्रेश अप होकर अपनी पूजा पाठ करके वो शाम को सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं जनता दरबार लगाने. ये कब बैठ रहे हैं, जब मायावती चीफ मिनिस्टर हैं, जब मुलायम चीफ मिनिस्टर हैं, जब अखिलेश चीफ मिनिस्टर हैं. लोग किसके पास आ रहे हैं, इनके पास 200-300-400 लोग डेली आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके. प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि मुझे ठेका दे दो, पट्टा दे दो, पेट्रोल दे दो. प्रॉब्लम्स हैं, मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है पुलिस वाला, मेरी विधवा पेंशन नहीं मिली, मेरी अनाज मेरा सड़ गया उसका मुझे जो मुआवजा है वो नहीं मिला. और वो पिछले 20-25 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वो डीएम से बात कर रहे हैं, वो सीडीओ से बात कर रहे हैं, वो वन अधिकारी से बात कर रहे हैं. तो ही नोज कि लोगों को प्रॉब्लम आ क्या सकती हैं. सोचिए मैं रोज 300-400 लोगों से मिल रहा हूँ पिछले 20 साल से, जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ. ये वो सीख पार्लियामेंट में सीख किस तरह है, अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जब वो बड़े हो रहे हैं तो ये बिल्कुल 26 साल के एक युवा की तरह गए. ही वॉज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन देन. तो पार्लियामेंट में भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी. अब आखिरी पॉइंट आता है, लोगों का ये सब तो ठीक है, लेकिन यार वो तो पंडित जी एंड ऑफ द डे, पंडित जी घंटी बजाते हैं, उनको क्या आता है. नो, मठ रन्स सम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. 40 तो उनके स्कूल चलते हैं, उनका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता है, उनका नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलता है, उनका 300-400 बेड का हॉस्पिटल चलता है. एंड ही इज रनिंग इट व्हेन ही वाज 22. जब उन्होंने संन्यास लिया था तब से बड़े महंत ने, मतलब महंत अवैधनाथ ने सारा काम इनको दे दिया था. तो ही इज रनिंग लाइक ए सीईओ. चेक साइन हो रहे हैं, हायरिंग चल रही है, फायरिंग हो रही है, बिल्डिंग बन रही है. अगर मैं आपको एक स्कूल चलाने को दे दूँ ना 5,000 बच्चों का, आपका पूरा जीवन खप जाएगा उसी में. उनके बच्चों के प्रॉब्लम, टीचर की हायरिंग, प्रिंसिपल का करिकुलम, एग्जाम, CBSE से बात, इससे बात, वो. एंड ही इज रनिंग हंड्रेड्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन सिंस ही वाज 22. और अब तक, अब तो उन्होंने बहुत सारे चार्ज किसी किसी को दे दिए बिकॉज ही चीफ मिनिस्टर. वो कभी महीने में एक बार आ पाते हैं और थोड़ा ओवरव्यू कर पाते हैं. पार्लियामेंट में एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको दोनों को समझती. वो साइंस के बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने BSc पढ़ी थी, MSc ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी, बीच में छोड़ के आनी पड़ी. फिर यहाँ पर उन्होंने वैदिक एजुकेशन भी पढ़ी. तो ही इज़ अ अमेजिंग मिक्सचर ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, वेरी एक्टिव इन पार्लियामेंट, यंग, अंडरस्टैंड द सोसाइटी. ये सबका कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ है. जो एक दो स्पीच सुनते हैं वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, जो मीडिया ने बनाने की कोशिश करनी, अरे तो भगवा है, ये तो हार्ड लाइनर है. ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज योगी आदित्यनाथ. तो ये मेरी किताब का सार है कि दिस ऑल इज योगी आदित्यनाथ. और वो दिखा भी हमें पिछले 5-6 साल में, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में, सड़कों में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जैसे कोरोना हैंडल हुआ, WHO से लेकर यूनिसेफ तक सब ने प्रेस करा योगी आदित्यनाथ को. ऑस्ट्रेलिया के MP ने कहा कि क्या हम योगी आदित्यनाथ को लोन कर सकते हैं अपनी कंट्री में टू सॉल्व कोरोना. जहाँ पे दंगे होते हैं वहाँ पे उनका एग्जांपल दिया जाता है. बुलडोजर इज बिकम लाइक अ टूल नाउ, राइट. तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखा भी दिया है कि ही इज नॉट जस्ट, क्योंकि उनको भगवा पहना है इसलिए नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने जिसने भी चुना, इसलिए चुना क्योंकि बिकॉज ही रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस, ही कम्स विद अ वास्ट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई ही इज देयर.
कौन सी एज में जीते थे फर्स्ट चुनाव?
देखिए पहला वो चुनाव हार गए थे वो था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चुनाव, जब वो
मतलब पहले बार पॉलिटिक्स का ज्वाइन,
पॉलिटिक्स के जो फॉर्मल पॉलिटिक्स के चुनाव में वो 26 साल के थे,
बीजेपी
बीजेपी से उन्होंने सारे चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव
26
ही वाज 26 द ईयर वाज 1998 और अटल बिहारी वाजपेयी उस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो उनकी वो कैबिनेट में नहीं थे लेकिन उस समय वो भी संसद में थे। और एक स्पीच काफी वायरल हो रही है आजकल, जो वो पतले से हैं बिल्कुल, उन्होंने पगड़ी लगा रखी है, संस्कृत में स्पीच ले रहे हैं, संस्कृत में ओथ ले रहे हैं वो पार्लियामेंट की, तो हाँ उनकी उम्र 26 साल थी और आज वो क्या हुआ।
तो 26 की एज में ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते?
देखिए
एंड सेम चीज मुझे वही लेसन से मुझे बताना है कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि फिर वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीते।
मेरे ख्याल से 98 का इलेक्शन उतना क्रूशल नहीं था उनके लिए, उनके जो उनके सबसिक्वेंट इलेक्शन थे, उन्होंने 98 जीता, 99 जीता, 2004 जीता, 2009 जीता, 2014 जीता, ये पांच इलेक्शन उन्होंने जीते कंटिन्यू। उसके बाद वो 2017 में पार्लियामेंट से रिजाइन करके असेंबली में चले गए। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनके गुरु ने उनको, महंत अवैधनाथ ने, जब वो 22 साल की उम्र थे 1994 में, अपनी एक तरह से स्पिरिचुअल जो सीट थी वो पास ऑन कर दी और उनको महंत तो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे महंत केवल आप मरने के बाद बना सकते हैं अपने, लेकिन महंत इलेक्ट बना दिया तो सब वहाँ को छोटे महंत बोलने लगे, मतलब महंत इलेक्ट कि आप ही महंत है इसके बाद। तो स्पिरिचुअल सीट आ गई उनके पास और जो मठ का सारा साम्राज्य था, इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड, जो मठ के सारे इंस्टीट्यूशन थे, जितना सेवा का प्रकल्प था, वो सारा योगी इतना चलाने लगे, जैसे मैंने बताया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चलाने लगे, तो उनको 4 साल एक्सपीरियंस आ गया। अब जब अडवाणी जी 98 में आए इनके पास कि भाई चुनाव है बड़ा और आपको ये सीट जिता के देनी है, तो महंत अवैधनाथ का जवाब बड़ा अच्छा था, कह रहे सीट तो जिता के देंगे लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। और योगी आदित्यनाथ से परिचय नहीं था लार्जर वर्ल्ड को ना अभी, क्योंकि उन्होंने जो 4 साल परफॉर्म करा, उन्होंने मठ की एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर दिया। अगर महंत अवैधनाथ 4 लोगों से मिलते थे तो 400 लोगों से मिलने लगे, महंत अवैध एक गाँव में जाते थे 10 गाँव में जाने लगे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी तब तक। और ही जस्ट 22 to 24, वो 22 की एज में उन्होंने संन्यास लिया। और आपको मजा लगेगा कि संन्यास लेने से पहले वो कॉलेज में पढ़ते थे, वो बैंडाना पहनते थे, वो चश्मा लगाते थे, उनके साथ के लोग गिटार बजाते, मतलब ऐसा नहीं था वो कोई सन्यासी परिवार से आते थे, वो भी एक मतलब 91-92 में जो भी एक अर्बन लड़का था, ही इज कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली, लेकिन वो भी पैंट शर्ट पहनते थे, जो भी उस समय के तरीके थे वैसे ही वो रहते थे। लेकिन क्या हुआ उनको, और मजे की बात आपको बताऊं, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ का मिलना भी राम मंदिर के प्रोटेक्स में हुआ। महंत अवैधनाथ राम मंदिर के लेक्चर लेने कॉलेज कॉलेज जा रहे थे, तो ही लैंडेड अप इन हिज कॉलेज ऑल्सो, और क्योंकि वो कमेटी के अध्यक्ष थे वहाँ से मिले। तो जब ये 22 से 22 साल की उम्र से 26 साल की उम्र में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा, तो उन्होंने अपनी लेगेसी इनको पास ऑन कर दी और फिर ये चुनाव जीते। लेकिन मुश्किल तब आई जब 2004 आया, क्योंकि 2004 आते आते भाजपा बहुत वीक हो गई थी, आपको याद है अटल बिहारी अपना चुनाव हार गए, 2009 में फिर हार गए, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीतने लगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम शुरू कर दिया। इन्होंने वहाँ पे खिचड़ी भोज शुरू कर दिया, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ पे खिचड़ी भोज करते हैं, लाखों लोग मकर संक्रांति में खिचड़ी भोज करते हैं, और फिर ये खिचड़ी भोज गांव-गांव में जाने लगे। तो ऐसा ऐलान होता था कल आपके गाँव में योगी आदित्यनाथ आएंगे, खिचड़ी भोज होगा, जिसे लोग साथ बैठ के खाएं। देखिए जो कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी जो सब दो चीज़ें हैं, कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, मतलब आपके साथ रोटी नहीं खाएंगे, आपके घर में अपनी बेटी नहीं देंगे, मतलब शादी नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा कम से कम रोटी का तो थोड़े मतलब साथ बैठ के लोग खाना खाएं, कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, कौन खा रहा है, किसी को नहीं पता होता। और योगी आदित्यनाथ जो एक संन्यास परंपरा से आते थे वो खुद बैठ के खाते थे, तो उन्होंने उस रीजन में कास्ट पे काम किया बहुत सारा कि कास्ट व्यवस्था कैसे तोड़ी जाए, वहाँ पे जो शराब थी वो तोड़ी, जब वहाँ पे माफिया थे उसमें हिंदू माफिया थे, पंडित माफिया थे, ठाकुर माफिया थे, मुस्लिम माफिया थे, सबको न्यूट्रलाइज करा। तो ये जो उन्होंने काम करा इससे 2004 तक आते आते भले ही भाजपा का कॉइन ना बचाओ, योगी आदित्यनाथ का एक अपना रेपुटेशन था वहाँ पे। तो ये उनका जो पॉलिटिकल प्रोग्रेशन है मेरे ख्याल से इसको देखते ही 2014 में जब वो चुनाव जीते और 2017 में मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और पूरी पार्लियामेंट्री टीम ने शायद उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना।
ऐसा क्या किया उन्होंने लास्ट सिक्स ईयर्स में जिसकी वजह से उनका इतना नाम हो गया
इनका नाम?
अगर आप अभी आप देखो कि बीजेपी के अगर हम लीडर्स की बात करें जो स्टेट लीडर्स हैं
जी,
मतलब अपार्ट फ्रॉम नितिन गडकरी, जयशंकर,
सेंट्रल के
सेंट्रल है उनको अलग हटा के देखो तो यूजुअली दो नाम बहुत ज्यादा आते हैं
जी,
राइट? वन इज हेमंत बिस्वा एंड योगी आदित्यनाथ।
लोग इनको फ्यूचर की तरह भी देखते हैं क्योंकि इन दोनों की एज भी काफी कम है, ये दोनों 55 से कम है, तो ये लोग जब अपने 60s में पहुंचेंगे तो they'll be at the prime of
अब तो हर जगह चीफ मिनिस्टर्स इन्होंने 50 under 60
कम के बना दिए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उतना होते होते शायद समय लगेगा। देखिए जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो मेरे ख्याल से वो एक गैम्बल भी रहा होगा नरेंद्र मोदी के लिए, पूरी पार्लियामेंट्री टीम के लिए, क्योंकि तब उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। ट्रैक रिकॉर्ड था 19 साल पार्लियामेंट में मठ चलाना, लेकिन एक गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था,
मैनेजमेंट का
सरकार चलाने का, वो मंत्री भी नहीं रहे थे कभी, तो एक मंत्रालय चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। जब वो आए तो उन्होंने अपने आप को ट्रेन करा, वो पूरे कैबिनेट को लेके 3 दिन के लिए आई एम लखनऊ चले गए कि मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग की, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की, बजटिंग की, काम कैसे करवाना चाहिए, एम्प्लॉय रिलेशन की ट्रेनिंग दिलवाई सारे हिंदी में. हाँ 3 दिन मैंने अपनी किताब में कोट भी करा, आई एम लखनऊ मतलब इट्स वेरी नियर राइट लखनऊ में. फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने रोज शाम को जैसे सुबह से शाम तक ऑफिस का काम है 6 बजे से एक एक दिन एक एक मिनिस्ट्री को लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि मुझे बताओ कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अच्छा बुरा केस कोई स्कीम जो भी हुई है मुझे बताओ. कोई पॉलिटिकल किसी ने अच्छा करा तो अच्छी बात बताओ, बुरा करा तो बुरी बात बताओ. और पूरे कैबिनेट को बुला लिया अपने कि सब सीखो, क्योंकि जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार 2002 के बाद अब 15 साल बाद बन रही थी, राजनाथ जी थे सीएम, तो जो भी मंत्री बने वो आज तक अभी मंत्री नहीं बने थे, उनको पता नहीं था सरकार होती क्या है. एक आध दो जो दूसरी पार्टी से आए थे वही बस मंत्री थे, एक सूर्य प्रताप शाही थे शायद जो पहले मंत्री रहे और अब भी मंत्री रहे, तो किसी को पता नहीं था सरकार चलती कैसे. अपोजिशन में तो बस आपको नाराबाजी करनी है और आपको विरोध करना है. तो इन्होंने सीखा, एक दिन एजुकेशन सीख रहे हैं, एक दिन हेल्थ सीख रहे हैं, एक दिन रोड सीख रहे हैं, एक दिन लॉ एंड ऑर्डर सीख रहे हैं. ऐसा चला कम से कम 30-35 दिन, रोज एक एक मिनिस्ट्री एक एक डिपार्टमेंट आता था, 1.5-2-3-4 घंटे अपना प्रेजेंटेशन करता था, रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, खाना भी वहीं आता था, योगी आदित्यनाथ अपना टिफिन में वो लौकी सब्जी खाते थे और बाकी लोग जो हलवाई के यहाँ से आते थे. मैं भी उस मीटिंग में मुझे कुछ में बैठने का मौका मिला क्योंकि मैं अपनी किताब पर रिसर्च कर रहा था, मुझे कहा था कि आप चुपचाप फ्लाई ऑन द वॉल की तरह बैठ जाइए, कुछ क्वेश्चन मत पूछिए बस ऑब्जर्व करिए. तो मैंने वो देखा, तो उन्होंने अपने आप को ट्रेन करा, उन्होंने बजट की फाइल्स पढ़नी शुरू करी कि पिछले 10 साल में, बल्कि उनको एक एंट्री भी मिली बड़ी मजेदार, उस एंट्री में लिखा था इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स. उनको लगा इनकम टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं, पता लगा वीपी सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री गरीब होते हैं, इनका टैक्स हम पे करेंगे. और योगी आदित्यनाथ ने उसको काट दिया, उन्होंने कहा भाई मेरा चपरासी पे करता है, मेरा चीफ सेक्रेटरी टैक्स पे करता है, मैं टैक्स नहीं पे कर सकता. और आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों का टैक्स नहीं पे करती है. तो उन्होंने अपने आप को ट्रेन करा सा. और फिर उन्होंने जो दो चीज़ें सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग में भी मिला और आज भी मिलता हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्टेट को प्रॉस्परस स्टेट बनाना है, इसकी जो इमेज है वो ख़त्म करनी है, जो गलत इमेज है वो ख़त्म करनी है,
गुंडा राज की
इमेज है. देखिए उत्तर प्रदेश केवल एक इंडस्ट्री को इंस्पिरेशन देता था, वो होता था बॉलीवुड को, कि कैसे गुंडे मवालियों की पिक्चरें बनाई जाएं, उसकी आधी स्टोरी की इंस्पिरेशन यूपी से आती थी, बिहार से आती थी. तो उनको वो खत्म करनी थी. बल्कि मेरी जो सेकंड बुक है उसका जो सब टाइटल है वो है कि हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर. पहले यूपी वाला भैया बोलना कभी, ऐसे तुम तो यूपी के भैया हो, मतलब तुम तो वही चोरी चकारी करके आए होगे, तुम्हारे पास तो डिग्री भी फेक होगी, तुम क्या पता कर मर्डर वर्डर चोरी करके ना आए हो. आज अब जब मैं कहीं जाता हूँ, अब मैं देश विदेश कई जगह योगी आदित्यनाथ की किताब लेके जाता हूँ, तो वो सेंस ऑफ प्राइड, अच्छा आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आएँ, आप राम जन्मभूमि से आएँ, कृष्ण जन्मभूमि से आएँ, ये सब एंटिटी डिजॉल्व हो चुकी थी. क्योंकि एंटिटी क्या बन गई थी, आप तो रेप कैपिटल हैं, आप तो चोरी कैपिटल हैं. तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई मुझे इसको क्लीन करना है, और क्लीन करूँगा तभी धंधा भी आएगा. जहाँ पे अगर एम्प्लॉई सेफ नहीं है, अगर मेरा पैसा सेफ नहीं है, कोई धंधा भी नहीं लगाएगा. और जैसे धंधा आएगा तभी मेरी जगह प्रॉस्परस होगी, प्रॉस्परस होगी तो मेरे पास भी टैक्स ज़्यादा आएगा, मैं गरीबों के काम कर पाऊंगा, यंग जनरेशन भी मेरे पास आएगी. सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, दिस वाज़ द बेसिस ऑफ इट. उन्होंने क्या करा, सारे जिलों में 75 जिलों में आइडेंटिफाई करा कौन सा ऑर्गेनाइज माफिया क्या है. ऑर्गेनाइज माफिया क्या होता है, जिसके पास पूरी टीम है, मतलब उसकी पेरोल पे लोग हैं ना 100-200, मतलब उसकी ट्रेनिंग है कि आप सैंड माफिया हैं, आप किडनैपिंग माफिया हैं, आप चोरी माफिया हैं, आप चीटिंग माफिया हैं, जो एग्जाम्स में चीटिंग कराते हैं वो भी बहुत बड़ी है, तो आप कौन सी विधायक हैं. तो सबकी लिस्टिंग हुई तो कम से कम 11,000 नाम आए. और ये वो लोग हैं राज, जिनके पास, जिनके ऊपर FIR भी हुई है लेकिन कभी अरेस्ट नहीं करे गए, जो कोर्ट रूम से बाहर गए, जो जेल से भाग गए, और इनको पॉलिटिकल पॉलिटनेस था. इनमें से कुछ लोग विधानसभा और लोकसभा में जा चुके हैं BSP और सपा से. इन सबको चिन्हित करा गया और इन पर दबिश बनाई गई, टीम्स भेज के अलग अलग STFs, अलग स्पेशल टास्क फोर्स अलग अलग जिले में करेगी, इनको न्यूट्रलाइज करा जाए, जिनके पास FIR उनको पकड़ा जाए और जेल में भरा जाए, या जो केस है उनको कंटिन्यू करा जाए. जब ये दबिश बनाई गई तो कुछ जगह काउंटर अटैक भी हुआ, जैसे आपने देखा होगा विकास दुबे के हुआ, आतिक अहमद के हुआ, और वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग करी, तो करीब 150 लोग जहाँ जाने चाहिए थे वहाँ चले गए, अपने आप कोर्ट में बिना जाए ऊपर चले गए. लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने लोग मार दिए. उस 10,000-11,000 पे जब दबिश बनी तो 150 लोग मिले, और इसमें से भी लोग कहते हैं केवल मुसलमानों को मार दिया. वो मुसलमान नाम चर्चित थे, इसमें मुसलमान केवल 19-20% थे, जो वहाँ की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन भी है, उतना क्राइम में भी होगा, बाकी गैर मुसलमान थे. उसमें ठाकुर भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें बनिया भी थे. तो कई बार एट टाइम कहते हैं गॉड लाइज इन द डिटेल्स, जब आप डिटेल में देखेंगे तब पता लगेगा. तो न्यूट्रलाइज करा उन्होंने, तो ये जब न्यूट्रलाइज हो गया तब जाके फिर बिजनेस आना शुरू हुआ. और बिजनेस आने के लिए मतलब उन्होंने कहा फिर मेरी दो रिक्वायरमेंट और हैं, एक तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट्स होने चाहिए, अच्छे एक्सप्रेसवे होने चाहिए, अच्छे रेल कनेक्शन होने चाहिए, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। इसके लिए शुरू करा, जो अपने अपने पास नहीं था, मतलब रेल कनेक्शन, तो वो सेंटर में बात करा। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। एंड ही हैज एडवांटेज बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि सरकारें चलती कैसे हैं सेंटर में, एंड ही इज फ्रेंड्स विद एवरीवन, ही कैन पिक ए कॉल। अदरवाइज क्या होगा, मैं चीफ सेक्रेटरी को कहूंगा, चीफ सेक्रेटरी गडकरी जी के सेक्रेटरी को लेटर लिखेगा, वो फिर होगा। यहाँ क्या है, वो गडकरी जी को फोन लगाओ, और यहाँ पे ये रैपो का भी फायदा हुआ। एक तो ही इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन इन सेंटर एंड इज रैपो विद ऑल ऑफ देम, तो बहुत स्मूदन होता गया। फिर एक्सप्रेसवे बनने लगे, जहां जाने में 11-12 घंटे लगते थे, वहां 3-4 घंटे में पहुंचने लगे। किसी पत्रकार से पूछिए जो चुनाव कवर करता है कि उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना कितना आसान है। अब आप छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट है, गोरखपुर में एयरपोर्ट है, गोरखपुर तो बड़ा भी हो रहा है, प्रयाग में एयरपोर्ट है, कानपुर में एयरपोर्ट है, आगरा में एयरपोर्ट है, आप सुबह शाम कर सकते हैं। पहले आपको अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाना है तो आपका 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम, अब आप सुबह शाम कर सकते हैं, आप अगले सुबह जाके शाम की फ्लाइट से आ सकते हैं या अगले दिन की फ्लाइट में आ सकते हैं। अब तो अयोध्या में एयरपोर्ट खुल गया। तो कैसे, पहले 3 एयरपोर्ट 2 एयरपोर्ट होते थे, अब 9 एयरपोर्ट है। पहले 25 फ्लाइट इन एंड आउट जाती थी, अब करीब 125 फ्लाइट इन एंड आउट जाती हैं उत्तर प्रदेश से। तो दूसरा, तीसरा उन्होंने कहा भाई पावर आनी चाहिए 24/7, जनरेटर पर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जनरेटर घर पर लाइट जल जाएगी, क्योंकि आप जनरेटर पर बड़ी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो 24/7 लाइट कैसा है, उत्तर प्रदेश में आपको अचरज होगा जान के, बिजली के नाम पर राइट्स होते थे, क्योंकि 10-10 दिन बिजली नहीं आती, लोग सड़कों पर आते थे, लोग दंगा करते थे, तब जाके लाइटें आती थी। लाइटें भी वो थी कि किस फेस्टिवल में लाइट आएगी, किस फेस्टिवल, वो भी धर्म के हिसाब से निर्धारित, किस जिले में लाइट आएगी। तो मायावती की सरकार है तो मायावती की जहां पे वोट मिलता है वहां से वहां वोट लाइट आती थी ज्यादा, जब मुलायम की सरकार है तो इटावा में, मैनपुरी, एटा, आजमगढ़, यहां पे लाइट आएगी। अब योगी आदित्यनाथ बोलते भी हैं, अब धर्म देख के और जिला देख के लाइट नहीं आती है, अब 24/7 लाइट आती है। तो अब गाँव में करीब 20-21 घंटे लाइट आने लगी है, जो टाउन मुख्यालय उन पर 22 घंटे लाइट आने लगी, और जो बड़े शहर में 24 घंटे लाइट आने लगी है। और टारगेट ये है कि हर जगह 24 घंटे लाइट आए। आपको जान के अजर्ज होगा, जो पूरी जेनसेट इंडस्ट्री है वो यूपी में स्लो डाउन हो गया, जेनसेट बिकते ही नहीं है वहाँ पे, बिकते हैं तो केवल एक ऐसा यूज़ नहीं होता है, डीजल का कंजम्पशन कम हो गया है जो बड़े जेनसेट्स होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी और पावर, ये उन्होंने जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके बाद फिर इंडस्ट्री जोर से आने लगी। सैमसंग की जो डिस्प्ले यूनिट है वो चाइना से हटती है तो उसको यूपी कैच कर लेता है, उसके लिए गुजरात भी पड़ा है, उसके लिए तमिलनाडु भी कैच कर रहा है, महाराष्ट्र भी कैच कर रहा है, लेकिन यूपी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब वहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, तो हिंदी पिक्चरें हैं वो महाराष्ट्र में क्यों बने, वहाँ पे ही बने वो। खैर, उसको उतना डेवलप होते होते कई साल लग जाएंगे, लेकिन इनिशिएटिव आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। एंड ही ऑल्सो सेज द डेवलपमेंट शुड बी नॉट ओनली नोएडा सेंटर एंड लखनऊ सेंटर, इट शुड बी एवरीवेयर, राइट। तो गोरखपुर में फैक्ट्रीज लग रही हैं, बनारस में फैक्ट्रीज लग रही हैं, कानपुर में फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो यही उनकी आई थिंक सफलता का राज है कि लॉ एंड ऑर्डर से फायदा इंडस्ट्री को भी हुआ और ईज ऑफ लिविंग भी हो गई लोगों के लिए, स्थिति होगी। और नरेंद्र मोदी की जो 40 बड़ी स्कीम है, चाहे वो गैस देने की, चूल्हा देने की, लाइट देने की, सड़क देने की, घर देने की, उन 40 की 40 में यूपी नंबर 1 है पिछले 6 साल से। मतलब जो सरकार से पैसा आ रहा है उसको तो इस्तेमाल कर लो ठीक से, तो उसमें नंबर 1 है, मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी लाए और जब मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं ऐड ऑन कर दूँ। तो एक गरीब आदमी से लेकर एक मिडिल क्लास आदमी से लेकर एक इंडस्ट्री तक सबको सहूलियत दी, तभी आई थिंक एवरीवन इज गंगो एंड बुलिश ऑन यूपी नाउ।
नेक्स्ट 5 बीजेपी के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं?
देखिए, मैं इसको केवल मतलब हम सबको फ्यूचर जानने में या फ्यूचर पे एक तुक्का लगाने में ओपिनियन में मजा आता है, इसको मैं एक स्ट्रक्चर में बांधता हूँ और उस स्ट्रक्चर से जो आंसर निकलेंगे मेरे ख्याल से वो आंसर सही आंसर होंगे। बीजेपी ने एक इंटरनल लिमिट बनाई है 75 साल की, कि जब 75 साल के होंगे तो एक तरह से राजनीति में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं ऐड किया है, मतलब बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने एक लिमिट बनाई है। नरेंद्र मोदी खुद 2026 में 75 के हो जाएंगे, लेकिन शायद वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर ले और उसके बाद जब वो 29 में आएंगे तब वो 75 के हो चुके होंगे। तो या तो भाजपा अपनी इंटरनल नॉर्म को छोड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ एक है, उनकी एज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब ही लुक्स लाइक ए 25-year-old ना, मतलब वो 6 दिन की यात्रा करने आते हैं उसके बाद अगले दिन कैबिनेट मीटिंग लेने लगते हैं। हिज एज एट वॉट एवर 71-72 इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, पिछले ये 10 साल में एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए जो यंग है। अब मैं 75 की टाइमलाइन को लेता हूं और देखता हूं कौन से लीडर हैं जिनके पास कम से कम 15-20 साल की राजनीति बची है, तो यानी कि वो इस समय 50-60 के बीच में होने चाहिए। पहला नाम आता है अमित शाह जी, जो उनके क्लोज भी हैं, होम मिनिस्टर हैं, बहुत क्लोजली गवर्नमेंट को वॉच करते हैं, कैबिनेट में हैं, बड़े बड़े 370 ऐसे डिसीजन लिए हैं, CA ऐसे डिसीजन लिए हैं, गवर्नमेंट को क्लोजली वॉच, इंस्टीट्यूशन नॉलेज भी है। तो बीजेपी में 3 चीज़ें मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको गवर्नेंस की नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि कल बच्चा पैदा हुआ और कल वो, क्योंकि उसका नाम गांधी है, उसका नाम यादव है, कि उसका नाम गौड़ा है, स्टालिन है, इसलिए आ जाए, उसको एक्सपीरियंस हो। अमित शाह जी स्टेट में रहे, गुजरात में बहुत समय, और सेंटर में मिनिस्टर है और पार्टी भी चलाई, तो आता है उनको सब। और एज उनकी साइड में मेरे ख्याल से ही 57-58, राइट। तो अभी 75 की नॉर्म से 15-20 साल की राजनीति, तो एक वो नाम आता है। योगी आदित्यनाथ बहुत ऑब्वियस नाम है। और हाँ, दूसरा एलिमेंट है कि वो पॉपुलर भी होने चाहिए, मतलब वो चुनाव भी जिता सके ना मुझे, कि भाई उनके नाम पे एक दो लाख लोग इकट्ठे भी हो ना, कि भाई एक रेवरेंस भी हो उसमें ना, एक कल्ट फिगर भी हो, जो अमित शाह जी हैं। दूसरे आते हैं योगी आदित्यनाथ, केवल 51 साल के, 19 साल पार्लियामेंट में, 6 साल के चीफ मिनिस्टर, अभी 10 साल के हो जाएंगे जब तक टर्म खत्म होगा, तब तक वो 54 के होंगे। एक्सट्रीमली पॉपुलर, मैं विदेशों में जाता हूँ वहाँ पॉपुलर है, मैं साउथ में जाता हूँ जहाँ लोग भाषा भी नहीं समझ पाते उनकी, वहाँ पॉपुलर है, एक बड़ा नाम आते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस, अगेन यंग हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, मेयर से बड़े और आज यहाँ तक आए, इंग्लिश हिंदी में बात कर सकते हैं, मराठी बोलते हैं, पॉपुलर हैं, एक एक स्टेट में पॉपुलर है, लेकिन ऐसे भी भारत में उनका नाम है, बिल्कुल एक ऑब्वियस नाम बनता है। हेमंत बिस्वा बाहर से आए हैं, एक ये भी है कि इंटरनली नहीं ग्रो हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन केवल असम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के लिए कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसमें काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर भी अब ये 5 साल पूरा कर लेंगे, पहले भी जब सोनेवाल जी चीफ मिनिस्टर थे उसमें मिनिस्टर थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पकड़ है, तो वो रीजन जो एक तरह से भारत से कटा हुआ था, और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी भी है कि लुक ईस्ट, तो ईस्ट को भी अपना पार्ट बनाओ, जो एक तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट में छिन्न भिन्न हो गया था, तो वो उनकी भी उम्र कम है, 60 से कम है, वो आते हैं। फिर अगर मैं नाम सोचूंगा तो स्मृति ईरानी पॉपुलर हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, राज्यसभा लोकसभा है,
और
नहीं देखिए प्राइम मिनिस्टर में आपका पॉलिटिकल वेट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल वेट कैसे बड़ा, आपने राहुल गांधी को हराया, आपने किसको हरा के चुनाव आप जीते हैं, तो वो भी एक पॉइंट पे, और उनकी एज तो और कम है, आई थिंक शी इज ओनली 47, राइट, तो ये सब
पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई,
पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई, शी इज अ वेरी गुड ओरेटर, उनको बहुत सारी, शी इज पॉलीग्लॉट, उनको 5-6 भाषाएं आती हैं, महिला हैं, महिलाओं से कनेक्ट करती हैं, ये हो गया। यंग लीडर्स में मैं देखता हूँ के अन्नामलाई को, मेरी बीजेपी पे किताब है जिसका तमिल ट्रांसलेशन में फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, मैं उनके साथ एक पूरे दिन रैली में उनके रहा, एक 10,000 के लोगों के बीच में हमने किताब लॉन्च करी, जो उनका एक कल्ट क्रिएट हो रहा है। ही वॉज अ आईपीएस ऑफिसर मेरे ख्याल से 2010 या 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर, ऑथर उन्होंने, मैंने भी ब्लूम्सबरी से लिखी है, उन्होंने लिखी है माई डेज इन खाकी द स्टोरी ऑफ अ रियल सिंघम समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उनकी उनके कॉप डेज की कहानी है। वो जब वो कॉप थे तो वो इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी चलता था उसमें काफ़ी पॉपुलर थे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। अभी वो तमिलनाडु में पॉपुलर हो रहे हैं, जो भारत जो भाजपा का वोट शेयर 5-6% रहता था उसको 10-12-15% पे ले आए, तमिलनाडु जो बीजेपी का स्टेट ही नहीं है वहाँ पे एकदम से चर्चा में आ गए, एंड ही वॉज 39 व्हेन आई वॉज डिस्कसिंग, ही मस्ट बी 40, राइट, तो ही इज़ सुपर यंग। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक सिक्वेंस ही दिखती है अब, लेकिन ये है कि पोस्ट मोदी एरा जो जब भी आएगा, नरेंद्र मोदी समवन लाइक सचिन तेंदुलकर, वो डिसाइड करेंगे कि वो रिटायर कब होंगे, क्योंकि उनकी क्षमता तो खत्म नहीं होगी, एक दिन वो ही डिसाइड कर लेंगे कि चलो अब हो गया, आप किसी और को बैटन पास ऑन कर दें। तो जब भी वो डिसाइड करेंगे मेरे ख्याल से इन द पोस्ट मोदी एरा, ही हैज क्रिएटेड अ बैटरी ऑफ लीडर, राइट। अब उस समय जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, जो एबल ज्यादा होगा, देखिए इलेक्शन जीतने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विनेबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं कि अडवाणी जी को खराब व्यक्ति थे, लेकिन 2014 में संघ ने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई इस समय विनेबिलिटी अडवाणी जी की शायद नहीं है, विनेबिलिटी नरेंद्र मोदी की ज्यादा है। तो आपको केवल व्यक्ति अच्छा ना, उसकी विनेबिलिटी क्या हो, तो आज से कमेंट करना कि पोस्ट मोदी एरा में उस समय किसकी विनेबिलिटी होगी। लेकिन एक बैटरी ऑफ लीडर्स है, इनमें से सिक्वेंशियली किसी ना किसी टाइम में, और यही जो मैंने नाम लिए मेरे ख्याल से टॉप तो होंगे, टॉप 4-5 मिनिस्टर तो होंगे, और इन्हीं में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए।
टॉप 3 नाम दे दो,
टॉप 3
अगर आपको लगता है कि ये 3 के बीच में आपको लगता है कि कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है।
हाँ, मेरे ख्याल से
बेस्ड ऑन टुडे
मेरे ख्याल से मैं 4 नाम लेना चाहूंगा, मन 5 लेने का कर रहा है। तो अगर मुझे आप 3 पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि
लंबी लिस्ट लेना हर समय आसान होता है। मेरे ख्याल से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, या दोनों भी बन सकते हैं, पहले कोई दूसरा कोई, एक प्रधानमंत्री एक होम मिनिस्टर ऐसा। और उनके बाद अगर तीसरा नाम मैं लूँ तो इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन द 3 नेम्स विच आई टॉक, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा। मैं आई थिंक मेरा हंस जाएगा देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा पे ये समय, तो मेरे ख्याल से हाँ ये नाम होने चाहिए।
इंटरेस्टिंग, वेल दैट्स इट, लाइक दीज आर ऑल माय क्वेश्चंस, आई हैड 500 अदर क्वेश्चंस, आई कैन कीप टॉकिंग टू यू फॉर एवर, बट इट वाज रियली नाइस, हमने बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इट वाज ऑनर टू हैव यू सर,
सेम है,
थैंक यू।
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हम जैसे एपिसोड करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट था। क्या आप चाहते हो कि ऐसे और इंडियन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के ऊपर हम और पॉडकास्ट बनाएं और भी क्यूरियस क्वेश्चंस पूछें हमारे आने वाले गेस्ट से, ताकि आप और हम
हमारे कल्चर और हिस्ट्री को बेटर तरीके से समझें एंड एम्ब्रेस करें? इफ यस, देन हमें कमेंट्स में बताओ कि कौन से और ऐसे गेस्ट हैं जिन्हें आप चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पर, और इस एपिसोड में क्या अच्छा नहीं लगा ताकि हम अगले एपिसोड में वो रिपीट ना करें और आपके लिए एक बेहतर एपिसोड बनाए। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इससे लाइफ में एक नया नज़रिया मिलेगा या नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि हम सब एक हमारे आसपास पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर पाए। बिफोर यू लीव, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज, बिकॉज आप जितना ज़्यादा एंगेज करोगे उतना ज़्यादा हमें हेल्प होती है। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।